आज का जो भाग है अधिकतर बहनों के लिए है, बहनों के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं पढ़ूंगा उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। आठवें पद से मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला तीमोथी उसका दूसरा अध्याय, या फिर पिछले इतवार को भी थोड़ा सा हमने नजर डाला था आठवें पद पे, लेकिन फिर भी आठवें पद से लेकर के पंद्रह पद तक मैं पढ़ूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। इसी प्रकार स्त्रियां भी, किस प्रकार, जिस प्रकार निर्देश पुरुषों के लिए है, अब इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी कुछ निर्देश है। इससे पहले उसने पुरुषों के लिए कुछ निर्देश दिए हैं और अब स्त्रियों के लिए निर्देश है। इसी प्रकार स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ जीव उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें। वे बाल गूंथने और सोने या मोतियों या बहुमूल्य वस्त्रों से नहीं, वरन अपने भले कामों कार्यों से संवारें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो अपने आप को भक्तिन कहती हैं, जो अपने आप को भक्तिन अर्थात गॉडली समझती हैं, कहती हैं। प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। मैं ये अनुमति नहीं देता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जताए, वो चुप रहे, क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में बनाई गई। आदम बहकावे में ना आया, परंतु स्त्री अधिक बहकावे में आने कारण अपराधी हुई। परंतु स्त्रियां यदि वे संयम के साथ विश्वास, प्रेम व पवित्रता में बनी रहे तो संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगी। अब ये उद्धार जो शब्द है, उद्धार प्राप्त करने के, उस सेल्वेशन से मतलब नहीं है, इसको हम सीख देखेंगे। ये बहुत कठिन पद है जिसको समझना कठिन होता है और बहुत लोग अलग अलग विचार हैं, पर आज इस स्थल पर हम थोड़ी देर के लिए ठहरना चाहेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि इस प्रकार से परमेश्वर पुरुषों के लिए कुछ निर्देश दे रहा है परमेश्वर का वचन। जब इस स्थल को आते हैं तो कई तरह के विचार आते हैं, लोग कई तरह की बातें करते हैं पौलुस के बारे में। पौलुस विवाहित नहीं था और शायद उसको स्त्रियों से ज्यादा कोई लगाव नहीं था, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो परमेश्वर का वचन है। पहली बात, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, इस बात को हमें समझना है। दूसरी बात, वचन वचन को प्रमाणित करता है। यह पौलुस लिख रहा है, लेकिन इसी प्रकार का निर्देश पत्रस ने भी अपनी पत्री में लिखा है। अगर पहले पत्रस को, उसके आप तीसरे अध्याय को एक से छह पद तक पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसके एक से छह पद तक, तो वहां पर इसी तरह की बातें, कुछ निर्देश स्त्रियों के लिए लिखी गई हैं, पत्रस वहां कहता है। लेकिन जहां जिस स्थल हमने पढ़ा पहला क्रंथियों उसका 11 अध्याय 1 से 16 पद तक, उसमें भी पौलुस ने स्त्रियों के लिए कुछ निर्देश दिए और वहां पर सर ढकने के बारे में बातचीत है, यह सच है। तिमोथियुस इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, और इफिसुस की कलीसिया में एक भव्य मंदिर था जो दायना का मंदिर था, पिछली बार भी मैं थोड़ा समझा गया हूं। तो दो स्थिति थी वहां पर, कुछ मंदिर के कारण, पूजा आराधना के कारण स्त्रियों का व्यवहार वहां पर अनुचित व्यवहार था, उस बात को ध्यान रखते हुए। फिर दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को देखते हुए, जो वचन में उत्पत्ति से जो शिक्षा है, अभी हम जाएंगे उत्पत्ति से जो शिक्षा है, किस प्रकार से परमेश्वर का वचन उसी चीज को यहां पर वर्णित कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, और स्त्रियों के लिए। सो जो ये स्थल है, आज हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसी जगह में जहां महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, बुरा नहीं है, गलत नहीं है, महिला को सम्मान मिलना है। परमेश्वर का वचन बहुत इस बात को सिखाता है, बिल्कुल बात बात सिखाता है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना है। महिला के अधिकार की बात करता है परमेश्वर वचन, महिला के अधिकार के बारे में सिखाता है, महिला की सुरक्षा के बारे में बताता है, और ये सारी चीजें पुरुष के पास को जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ व्यवहार करें। और परमेश्वर का वचन बार बार परिवार के बारे में जब शिक्षा देता है तो उसके बारे में शिक्षा देते हैं, वो बार बार पुरुषों को सिखाता है कि किस प्रकार से पुरुषों को स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उनको निर्बल पात्र समझना चाहिए। ये सारी शिक्षा पुरुषों के लिए भी परमेश्वर का वचन देता है। जब हम विशेष इस स्थल में आते हैं तो इनके बाद जब पैंस कह रहा है कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हर स्थान पर पुरुष बिना क्रोध के, अगर आप पहला पत्रस के तीसरे अध्याय में आएंगे, यहां पर एक पद है केवल पुरुषों के लिए, सात पद, और उसमें क्या कह रहा है, इसी प्रकार हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है, वो जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिस जानकर उसका आदर करे, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में बाधा ना पहुंचे, तुम्हारी प्रार्थना में बाधा ना पहुंचे। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि पुरुषों का व्यवहार किस प्रकार से महिलाओं के साथ होना है। अर्थात अगर महिला, अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके साथ क्रोध का व्यवहार करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, उसका सम्मान नहीं करता, उससे प्रेम नहीं करता, उसका आदर नहीं करता, और तब वो प्रार्थना में जाता है तो उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बैलेंस संतुलित है। लेकिन ये जो स्थल है यहाँ पर स्त्रियों को भी कि किस प्रकार से स्त्रियों से क्या अपेक्षा की जाती है। तो जो स्थल है परमेश्वर ने संस्थान दो संस्थान तैयार किए, एक परिवार है और एक कलीसिया, एक परिवार और कलीसिया। और जैसे हमने पहला ग्रंथियों उसको 11 अध्याय में पढ़ा था, वहां पर विवरण है कि कलीसिया का सिर परमेश्वर है और स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। स्त्री का सिर पुरुष है और कलीसिया का सिर परमेश्वर है। परमेश्वर प्रधान है, परमेश्वर के बाद पुरुष है, पुरुष के बाद परिवार में स्त्री है। ये परमेश्वर का नियम आरंभ से बन दिया गया है। अभी हम उस स्थल पर जाएंगे। मैंने पहला क्रंथियों को समझाने का पढ़ने की कोशिश करी कि वहां पर समझे कि परमेश्वर ने किस क्रम से मनुष्य को सजाया है और किस क्रम से उसने रखा है। तो जो ये बातचीत हो रही है ये कलीसिया में बात हो रही है कि एक स्त्री को, एक महिला को किस प्रकार से कलीसिया में व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों को बाहर प्रचार करने के लिए मना नहीं है। मरियम ने सुसमाचार प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के जुटने का सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन कलीसिया में नहीं, लेकिन बाहर उसने सुसमाचार दिया। अकेला प्रिस्किला के बारे में हम पाते हैं, अकेला प्रिस्किला ने अपुल्लोस को सलाह दी, सुझाव दिया, शिक्षा दी, लेकिन उस रीति से नहीं, एक साथ मिलकर के बैठ के बातचीत करके। लेकिन जहां अगुवाई की बात आती है, अगुवापन की बात आती है, वहां पर पूरी रीति से परमेश्वर ने पुरुषों को यह अधिकार दिया है, पुरुषों के साथ में जिम्मेदारी दी है, पुरुषों के पास यह हाथ दिया है। कलीसिया में बहने प्रार्थना कर सकती है, 11 अध्याय में भी हमने उस बात को पढ़ा है और भी कई स्थान में, और प्रार्थना करना आराधना करना में उसका भाग है। लेकिन जहां तक प्रचार की सेवा है, प्रचार की सेवा की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में पुरुषों के हाथों में दिया गया है। हाँ, महिलाओं के बीच प्रचार करने हैं, बड़ी बहनें वो छोटी बहनों के साथ शिक्षा दे सकती हैं, कई सारा क्रम है। क्या कारण था जब कुरुंदी कलीसिया को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो कुरुंदी कलीसिया में भी बहुत कुछ ऐसी बात थी जिसको पॉलुस को सुधारना पड़ा। जैसे मैंने डायने की देवी के बारे में बताया, वहां उस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे जिसको अच्छा नहीं था, और पिछली बार भी बताया था ये बाल खोलकर जैसे नाचना, और आराधना में भी आकर, आराधना भवन में हमें आकर उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था, और इसलिए वहां पर निर्देश दिया गया किस प्रकार से कलीसिया में रहना। अब यहां पर भी मुझे और आपको, जब हम परमेश्वर में आते हैं, बहनों के लिए किस प्रकार से उन बहनों को सादगी से अच्छा रीति से जीवन को व्यतीत करना है। नवपद तो तीन बातों को हम कुछ बातों को अगर हम देखें, कई तरह से हम बांट सकते हैं। अगर 9 पद से लेकर के 15 पद तक हम इसको विभाजित करें तो चार खुद बातें हैं। महिलाओं का अपीयरेंस, उनका प्रदर्शन दिखावा, उनके एक्शन उनके क्रियाएं, उनके शब्द उनका, उनके अधीनता सबमिशन। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम और कुछ देखें तो तीन बातों खास से मैं आपके सामने आज लाना चाहूंगा, जो तीन बातें महिलाओं के लिए। पहली बात, 9 से 10 पद तक महिलाओं का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 11 से 14 पद तक रेस्ट्रिक्शन, महिलाओं के लिए प्रतिबंध, महिलाओं के लिए जो प्रतिबंध है। 15 पद रिडेम्पशन, छुटकारा। अब ये उद्धार, सेल्वेशन से संबंधित इसको हम देखेंगे। सो तीन मुख्य बातें, 9 से 10, 12 से 11 से 14 और 15 पद। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं तो यहां पर हम पहली बातों को, क्या परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है, 9 पद, इसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से पुरुषों को परमेश्वर ने के वचन ने सुझाव दिया है, स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें। जब कलीसिया में आए, बहनों के वस्त्र किस प्रकार के हैं, इसीलिए कई बार जवानों की जब यहां मीटिंग होती है, हम जवान बच्चों को सिखाते हैं। एक बार यहां जवान की कैंप चल रहा था और मैं सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा था, एक बहन, एक बच्ची आई और एकदम से, अभी नया नया जब आजकल एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं ना, और वो ड्रेस देख देख के पहनते हैं, और उसने ऐसी ड्रेस पहनी और ड्रेस पहन के अंदर चली आ रही थी, और मैं ऐसे ही खड़ा होता, मैंने कहा जाओ कपड़े बदल कर करो। बाद में उसकी माँ कहने लगी कि हम इसको मना कर रहे थे, लेकिन ये जिद पड़ गई, पीछे पड़ गई, और पीछे पड़ करके इसने ये कपड़े बनवाए। बहुत इस परमेश्वर के वचन में सिखाता है मसीही हैं हम, विश्वासी हैं। अगर हमने आगे इसी तरह इसी शब्द के साथ वो क्लोज करता है, समाप्त करता है, बंद करता है। कपड़ा पहनना पाप नहीं है, साफ कपड़े, अच्छे कपड़े, नए कपड़े ये पहनना पाप नहीं है, लेकिन किस प्रकार का आपका कपड़े पहनते हैं। वो यहां कह रहा है किस प्रकार के उचित वस्त्रों से, किस प्रकार के, जिस वस्त्रों में आपकी शालीनता दिखाई दे सके, जिन वस्त्रों में आपकी सादगी दिखाई दे सके, जिस वस्त्रों में आपकी शालीनता दिखाई दे सके। और वो कह रहा है इन तरह से तुम अपने आप को सुसज्जित करो, इस तरह से तुम अपने आप को तैयार करो। अब आज हम संसार के फैशन को देखकर भागते हैं, लेकिन जब कलीसिया में, ताकि जब आप कलीसिया में आ रहे हैं तो कलीसिया में आते समय लोग आपको देख करके, आपके वस्त्रों को देख करके किसी प्रकार से शैतान को अवसर ना मिले, शैतान को आप अवसर ना दें, और किसी भी पुरुष को, किसी भी जवान को आप परीक्षा में गिरने का कारण ना बनाएं। ये कहने का अर्थ है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बहुत सारे जगहों में लोग इस प्रकार से, यहां तक कि प्रचारिकाएं, महिलाएं बहुत सारी ऐसी प्रचारिका हैं जो प्रचार करती हैं, ना तो उनके कपड़े अच्छे रहते हैं, ना उनकी सादगी रहती दिखाई देती है, ऐसे फैशन में रहकर के वो अच्छा नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है वो, हमें समझना इस बात को। और यहां पर कह रहा है कि बिल्कुल रीति से किस प्रकार से, और वे बाल गूंथने में बाल बनाने में लग रहे हैं 5 घंटे, आजकल तो पुरुषों को भी लगते हैं, कभी कभी महिलाएं कहती हैं हमसे ज्यादा समय तो इन्हीं को तैयार होने में लगता है, 5 घंटे तो ये खड़े होते हैं शीशे के सामने, सादा नहीं है। अब ये मतलब नहीं कि हम बिना मुंह धोए बिना बाल बनाए चले आए हैं ना, 10 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई, 10 दिन से बाल नहीं कटवाए, 10 दिन से ये नहीं बनाई, तो ऐसे चले आ रहे हैं ना। अरे प्रभु ने कहा सादगी में रहने के लिए, ये वचन नहीं कहता, इसका मतलब नहीं है, वो तो आलसीपन है, वो सुस्ती है, वो दूसरा, उसके दूसरी थ्योरी, उसका दूसरा। परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, लेकिन आपको सही रीति से, साफ सुथरे से, कायदे से रहकर करना है, क्योंकि आपके शब्द बाद में निकलते हैं, आपको लोग देखते पहले हैं। और यहां पर वो इसी चीज को क्रम में ला रहा है, वो शब्द बाद में है, आपका अपीयरेंस पहले है। मैं अक्सर बोलता हूं, जब हम बाराबंकी में उस समय दूसरा था, खड़े होकर हम बाहर सड़कों पर प्रचार करने जाते थे, तो जब मैं किसी को भी अपने साथ ले जाता था, मैं कहता था भैया मेरे साथ प्रचार करने चला है तो मैं अपने कायदे से रहना है, दाढ़ी बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, इधर पहले पड़े हैं, इधर पड़े हैं, 10 दिन से सिर में तेल मिल रहा है, कुछ नहीं करा, आओ तुम हमें हम आनंद का समाचार सुन, अरे तेरे चेहरे पे तो 12 बज रहे हैं तो हमें आनंद का समाचार, समझने की बात है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर इस बात को समझना है जो महिलाओं के लिए गंभीर बात है, और इसलिए हमें किस प्रकार से अपने वस्त्रों को पहनना है। संसार क्या कर रहा है वो हमें नहीं देखना, परमेश्वर ने संसार से हमें अलग रखा है, हम अलग किए हुए लोग हैं, सेपरेटेड हैं, परमेश्वर ने हमें संत बनाया है। और जब हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु की आराधना करने जाते हैं, हमारे जीवन में सादगी दिखाई देनी चाहिए, कहीं भी हम रहते हैं, अगर हम स्कूल में हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी है, किसी जगह परमेश्वर ने लोग हम किस प्रकार से पहचान के देखते हैं, आपको किस प्रकार से पहचानते हैं, आपको फैशन करने वाली से पहचानते हैं, बाल गूंथने वाले से पहचानते हैं, या आपको आपके स्वभाव से पहचानते हैं, आप बहुत मधुर हैं, आप बहुत प्रेमी हैं, आप सचमुच मेहनती हैं, आप परिश्रम करने वाले हैं। हमारे बीच में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और यहाँ क्रिश्चियन कॉलेज में, और वो बच्चे मास्टरों की तुलना करते थे, और एक पास्टर है उनकी कलीसिया चलती है, वो बच्चे कहते थे कि वो तो कभी क्लास लेने ही नहीं आते, लेकिन दूसरे एक मास्टर को बोलते थे, वो भाई, वो भी भाई विश्वासी है, कि वो चाहे 2 बच्चे भी रहेंगे तब भी क्लास में आएंगे और अपनी मेहनत से पढ़ाएंगे, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्लास में अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करें। और बच्चों के सामने क्या साक्षी है, आप जिस स्थान में, चाहे ऑफिस में है, चाहे कारखाने में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे नर्स हैं, चाहे सिस्टर हैं, चाहे टीचर हैं, कुछ भी, आपकी साक्षी क्या है, लोग आपको देखते क्या है। वो क्या कह रहा है कि बाल वस्त्रों से नहीं, उस समय बाल गूंथने सोने या मोतियों के बलमोल में, ये पहले तांबे और पीतल के बनाकर, पहले प्राचीन समय में दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर आक्रमण ना करें, उनकी सुंदरता को देखकर वो लोहे और पीतल तांबे के बना के पहनते थे। वो धीरे 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 करके चेंज हो गया, आपके इसमें आ गए चांदी और सोने में आ गया, शुरुआत वहां से हुई है। हमें कोई भी चीज उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, शुरुआत वहां से हुई। तो अब वो सोना चांदी, क्योंकि, लेकिन सोना चांदी क्या, सोना चांदी से शैतान आकर्षित नहीं होगा, वो तो और आकर्षित होगा, साधा नहीं। मेरा कहना मतलब यह है, परमेश्वर के वचन में क्या सिखाता है कि इसको गंभीरता से लाना, कि अगर हम प्रभु में हैं, यही चीज है, वो कह रहा है कि इससे अपने आप को क्या करें, साधन है, कह रहा है ये नहीं बहुमूल्य वस्तु से नहीं, वरन अपने आप को भले कार्यों से संवारें, भले कार्यों, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो अपने आप को क्या कहती हैं। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, अगर हम अपने आप को कहते हैं हम गॉडली हैं, भक्तिन है, जो इंग्लिश में शब्द है गॉडली शब्द है, अगर हम अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार का कार्य किया है, तो हमारा पहरावा, हमारा फैशन, हमारी चीज, सब चीजें, अरे संसार का रास्ता चलता है, चलता नहीं है, कुछ नहीं चलता, ये आपका हृदय को धोखा देना है। और शैतान यही चलता रह करके हमें भ्रम में डाल देता है, और फिर हम धीरे धीरे कंपटीशन में पड़ जाते हैं, कंपटीशन पड़ जाते हैं। कल हमें किसी परिवार में जाना था, एक बच्ची का शादी की बातचीत चल रही है और हमें कुछ बातचीत करनी थी, और हमने उस बच्ची को कुछ स्थिति में देखा। मैंने, बेटा तुम्हारी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई, अभी शादी नहीं, अभी शादी, हम लोग बात कर रहे हैं तुम्हारे लिए दूसरी कलेस के, मैं बुलाया गया था तो, लेकिन शादी बाद तुम क्या करोगी अगर तुम अभी इस समय, क्यों मुझे छुपाना पड़ रहा है, क्यों लज्जा आ रही है, अगर तुम सही हो तो क्यों लज्जा आ रही तुम्हारे पर, समझना इस बात को, सीखना है। माफ कीजिएगा मेरी बात थोड़ा कठोर लगेगी, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को कड़वी दवाई देनी पड़ती है और वो जल्दी आराम अच्छा मिलता है, कभी कभी होता है, वो जरूरी है, लेकिन गंभीर बात है। परमेश्वर के भय में सच्चाई से इस वचन को आपको रखना चाह रहा हूं। मैं बहनों का आदर करता हूं, प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी है, आज हमारे विवाह के 42 साल हो गए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, 42 इयर्स। सो परमेश्वर ने हमें आशीष दी, बच्चे दिए हमें, हमारी बेटियां हैं, है ना, हमारे नाते पोते हैं, आप भी हमारे बच्चों के समान हैं, कितना बड़ा परिवार है हमारा, हमारे लिए खुशी की बात है, ये आशीष है, ये हमारे लिए आशीष की बात है। हम आपसे प्यार करते हैं, अगर हम किसी को समझाते हैं सिखाते हैं, हम सचमुच प्यार करते हैं, चिंता करते हैं, इच्छा रखते हैं, ये हमारा हृदय है। और अगर हम शिक्षा देना चाहते हैं तो परमेश्वर के भय में देना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन हमें परमेश्वर सामने खड़े होना पड़ेगा, ये परमेश्वर में जिम्मेदारी ठहराई है, ये कलीसिया की एक जिम्मेदारी है गंभीरता के साथ, और इसलिए हम इस बातों को गंभीरता से लें। ये अलग से मैं पोषण लेके नहीं प्रचार कर रहा हूं इस सीरीज में, और यहां कह रहे हैं इसलिए हमें देखना है कि हम किस प्रकार से अपने आप को कौन से भले कार्य में सुधारते हैं, कितना अधिक हमारे जीवन में प्रेम पाया जाता है, कितने हमारे जीवन में हमारे लिए हमारे पौनाई पाई जाती है, कितना कि हमें किसी मरीज की सेवा पाई जाती है, किसी की देखभाल पाई जाती है, कितना दिन हम दूसरों के लिए चिंता करने के तैयार होते हैं, बहुत कुछ भले कामों का लिस्ट बन सकती है। और तिमोथियस में और आगे चल के हम देखते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो देखते जाएंगे वो किस प्रकार से कार्यों का वर्णन करता है, अभी यहां पर वो फाउंडेशन डाल रहा है, तब उसको एक्सप्लेन करेगा कौन से कार्य किस तरह से किन महिलाओं को, पुरुषों को, जवानों को कैसे करना है। और तिमोथियस ने, पौलुस ने तिमोथियस को लिखते हुए सबको समझाने की कोशिश करा है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे महिला हो, जवान स्त्री हो, चाहे विवाहित हो, चाहे विधवा, सबको समझाया उसने इन इस पत्रियों में, और हम देखते चले जाएंगे इसको। लेकिन यहां पर वो एक बात कह रहा है कि वास्तव में कलीसिया में किस प्रकार से हमें अपने जीवन को रखना है, और वो कह रहा है कार्यों बल काम में, जैसे यदि हम अपने आप को भक्तिन मांगते हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार से ये सारी चीजें होनी चाहिए। तब वो कह रहा है आगे चल के 11 और 12 पद, इस बात पे बहुत वाद विवाद होता है, क्यों स्त्री को चुप रहना चाहिए, या चुप रहने का मतलब मुंह बंद करने की वाली बात नहीं है, मुंह बंद करने वाली बात नहीं कि मुंह बंद करके नहीं, महिला गाना गाती है, हमारे बीच में हैं बहनें, बच्चे हैं, वो बाइबल पढ़ती हैं, प्रार्थना करती हैं, जब धन्यवाद होता है धन्यवाद में समांगे होती हैं, वो सब परमेश्वर के वचन के अनुसार है, आराधना का तरीका है। आराधना में ये नहीं कि बहन बोल नहीं सकती, लेकिन किस प्रकार से, क्यों ये महिलाएं खड़े होकर के अपने अगवेपन को पुरुषों से ज्यादा दिखा रही थी। स्त्री को, किसी भी स्त्री को ये परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता कि वो पुरुष से ऊपर चढ़ के अगवेपन में दिखाए। जब वो पुलपिट संभालती हैं और खड़े होकर प्रचार करते हैं और पुरुष बैठे हुए हैं, उसका मतलब क्या है, वो उनके हाथ में अथॉरिटी है। एक प्रीचर, एक सेवक, एक एल्डर, एक पास्टर जो है, उसके पास में परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। और आप बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में ध्यान रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, कौन थे वो, महिलाएं थी उनके साथ, लेकिन महिला उस तरह से चुनी नहीं गई थी, महिलाओं को महिला सेवा कर रही थी, किस प्रकार की सेवा कर रही थी। जब कलीसिया की स्थापना हुई, किसके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई, पुरुषों के प्रचार के द्वारा हुई, पुरुषों को सुसमाचार प्रचार के, कलीसिया स्थापना के लिए अधिकार दिया गया। शिक्षा कौन दे रहा है, पुरुष दे रहे हैं, 41 बाइबल में 41 पुरुषों का वर्णन है जिनको ऑर्डेन किया गया, जिनको अभिषेक किया गया विभिन्न प्रकार से सेवा के लिए। उसमें एक भी स्त्री उस तरह से नहीं है। परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। हाँ, भविष्यवाणी का वर्णन है, फिलिपिस की बेटियां ने भविष्यवाणी करी, लेकिन कहां करी उसका कोई जिक्र नहीं है। पर कलीसिया में किसने, अकेले प्रेस्किला ने सेवा करी। अकेला प्रेस्किला का घर बना हुआ था और उसके घर में आराधना होती थी। जब हम रोमियो उसके 16 अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे उसके घर में आराधना होती थी। और अकेला प्रेस्किल ने पौलुस का बहुत अधिक साथ दिया सेवा में, सुसमाचार प्रचार कार्य में। लेकिन वो कलीसिया की अगुआ बनकर नहीं रही, कलीसिया की अगुआ बनकर नहीं, फीबे थी। कई तरह से उनकी सेवाओं का भाग था, खास से रोमियो। जब हम 16 अध्याय में आते हैं तो 16 अध्याय में हम देखते हैं करीब 14-15 लोगों के नाम है, जहां पर उन नामों में हम कुछ महिलाओं को भी देखते हैं और किस प्रकार से उस सेवा में सहभागी हुई। जब हम रोमियो के अध्ययन में आएंगे तो हम देखेंगे उसमें। लेकिन यह समझना है, अब यहां पर चुप रहने का मतलब क्या, वो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करें, अधीनता से शिक्षा ग्रहण करें। महिलाओं का काम है शिक्षा को स्वीकार करना, शिक्षा को ग्रहण करना। घर में महिला का योगदान होता है, लेकिन अगर पुरुष को चलाती है, पुरुष के सर पर बैठ के रहती है, तुम बैठ जाओ उठ जाओ। मैं अक्सर एक सुनाता हूं, एक बार को बच्चों को याद होगा, एक बार कुछ लोग ऊपर पहुंच गए, पत्रस स्वागत करने के लिए खड़ा था। तो पत्रस इधर खड़ा होता, एक लाइन इधर लगी थी, एक पत्र। तो पत्रस ने कहा कि जो भी पुरुष पृथ्वी पर रहते हुए अपनी स्त्री के कहने पर नहीं चला है वो इस लाइन में आ जाए। जो भी पुरुष अपने स्त्री के कहने पर नहीं चला है वो इस लाइन में आया। सब लोग इधर खड़े होते हैं। अच्छा, धीरे धीरे करके हुए कुछ लोग आए, एक जन आया, उससे पूछा तुमने कभी अपनी पत्नी के कहने पर नहीं चले, अपनी स्त्री के कहने पर नहीं चले। अब बेचारा चुप, तब धीरे से बोलता है नहीं 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 नहीं, तो यहां क्यों खड़े हो, कैसे आए तुम, मेरी पत्नी वहां खड़ी है ना। उसने कहा तुम यहां खड़े क्या करो, वहां जाओ। समझने की कोशिश करिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हम आपस में रह के एक दूसरे की सुनते हैं, हम आपस में रहकर एक दूसरे की मानते हैं, हम आपस में रहकर एक दूसरे का आदर करते हैं। यह मतलब नहीं है कि पत्नी पति बिल्कुल पत्नी की नहीं सुने, यह मतलब नहीं है। लेकिन संचालन, घर का संचालन, निर्णय लेने का मुख्य अधिकार पुरुष को है, इस बात को समझना है। पुरुष को यह अधिकार है, इस बात को समझना है। कलीसिया में भी मुख्य अधिकार पुरुषों को दिया गया, और यहां पर स्त्रियां सीखती हैं, शिक्षा प्राप्त करती हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा दूसरे तक पहुंचाती हैं, क्योंकि उनकी सेवा महिलाओं के बीच में है, उनकी सेवा बच्चों के बीच में है, उनकी सेवा बाहर है, कलीसिया से बाहर में है, परिवार में है, उनकी जिम्मेदारी है, समझ रहे। लेकिन जब वो कलीसिया में आती हैं तो कलीसिया में उनका अधिकार सिखाने का नहीं है, उनका अधिकार सीखने का। और ये लोग कई बार नहीं समझते और इसी पर लोग वाद विवाद करते हैं, अरे ये लोग तो महिलाओं को दबा के रखने वाले हैं। आज इस में जो थियोलॉजी चल रही है दो तरह के अलग अलग है। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, संसार क्या कह रहा अलग बात है, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्योंकि कल हमें बाइबल के अनुसार परमेश्वर सामने हिसाब देना पड़ेगा। फिर से मैं कह रहा हूं, बाइबल महिलाओं को दबाने के लिए नहीं कह रही, बाइबल महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन यहां पर एक विधि बनी हुई है, एक तरीका बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है, जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति से आरंभ किया है और जो सृष्टि से नियम परमेश्वर ने बनाए हैं उस नियम के अनुसार पूरे संसार को चलना है। अब पुरुष, अब किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि उस नियम को जो परमेश्वर ने बनाया है उसको पुरुष या स्त्री तोड़े, उसको वचन को तोड़ मरोड़ करके, इस चीज को हमें समझना है। तब वो कहता है 12 पद में, यह अनुमति नहीं देता कि स्त्री उपदेश दे, प्रचार करे, शिक्षा दे, है ना, या पुरुष के पर अधिकार जताए, वो चुप रहे। ये परमेश्वर वचन सिखा रहा। अभी यहां पर बहनों की मीटिंग हुई थी, बहनों ने, कई बहनों ने यहां पर बहनों के बीच में प्रचार किया, शिक्षा दी। कई बहनें हमारे थी, मेरी बहन सुनीता थी और दिशा थी, आंटी थी, कुछ कुछ और बहनें थी जिन्होंने करा, ठीक है, अच्छा है उनके पास। अभी आने वाले दिन फिर हमारे बीच में हुआ, तो वो नहीं, उनके पास स्थान है, उनके पास तरीका है, जो परमेश्वर का हमें समझना है। परमेश्वर का वचन समय, स्थान, तरीके को सब हर चीज में रखता है। वचन के बारे में भी यही है, और इसीलिए केवल एक स्थल पर नहीं, पौलुस ग्रंथों को भी समझा रहा है, पत्रस केवल एक खास कलीसिया को पत्रस पत्री नहीं लिख रहा है। वो पत्रस जो है उन विश्वासियों को लिख रहा है जो बहुत विश्वास में आने के बाद प्रसिक्यूशन के साथ सतावने के साथ तितर बितर हो गए थे और जिनके द्वारा कई जगह सुषमाचार पहुंच गया था और अब कलीसिया बढ़ती चली आ रही थी, तो उन विश्वासियों को दृढ़ करने के लिए कह रहा है। तो शिक्षा हर एक को चाहिए। तो यहाँ पर तो दूसरी बात यह है, दूसरी चीज ये ना केवल ये लेकिन ये प्रतिबंध है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि स्त्री को कलीसिया में खड़े होकर के उपदेश देना या प्रचार पीठ पे खड़े होकर अधिकार दिखाना वो सही नहीं है। ये परमेश्वर के वचन, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा हूं और स्पष्ट रूप से परमेश्वर। लेकिन कारण क्या है? अब 3:14 पद में कारण बताया गया क्यों ऐसा करना है? कह रहा क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में बनाए गए। आदम पहले और हव्वा बाद में। अब आइए हम थोड़ा उत्पत्ति में जाएंगे, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय। अब ये मैंने कहा कि वो क्रम जो उत्पत्ति से है वो क्रम परमेश्वर यहां ला रहा है। परमेश्वर अपने सिद्धांतों में समझौता नहीं करता, तोड़ मरोड़ नहीं करता, है ना? परमेश्वर अपने सिद्धांत में, उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, 18 पद में पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? आदम को परमेश्वर ने किस तरह से बनाया? एक मट्टी का पुतला लिया और उसमें उसने सांस फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। अब आदम अकेला है, कौन उसको चाहिए? तब उसने कहा कि वो अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक उपयुक्त क्या बनाऊंगा? सहायक बनाऊंगा। तो स्त्री क्या हो गई? आदम के लिए एक सहायक हो गई, उपयुक्त, हेल्पर हो गई, मददगार हो गई। गुलाम नहीं है, नौकरानी नहीं है, समझ रहे? पुरुषों को यहीं पर पुरुष लोग यही करते हैं, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में यही है कि हम पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान इस तरह से नहीं है, बाइबल पुरुष प्रधान की बात नहीं कर रही, लेकिन पुरुष के कुछ स्थान की बात कर रही है, पुरुष के कुछ अधिकार की बात कर रही है, पुरुष के कुछ आहा की बात कर रही है। लेकिन एक और पद मेरे को याद आ रहा है, गलती उसका 3 अध्याय, गलती उसका 3 अध्याय, आगे बढ़ने से पहले याद आ गया तो मैं बोलूंगा, 3:28। अब ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी, ना दास है, ना कोई स्वतंत्र है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, मसीह में। अब इस पद को लोग कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। अरे बाइबल तो कहते हैं हम सब बराबर हैं। बाइबल क्या कहती है? हम सब बराबर हैं। अब स्त्री पुरुष में कोई मतलब नहीं है, तो जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री कर सकती है, जो अधिकार पुरुष के पास वो स्त्री के पास है, जो पद पुरुष के पास वो पद इस। बाइबल ये नहीं समझा रही, ये नहीं है। एक पद को लेकर आप किसी भी डॉक्ट्रिन को नहीं बना सकते। अगर आप इसको पढ़ना है, समझना है, तो आपको पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, खंड को पढ़ना पड़ेगा जो 26 से लेकर 29 तक है। अब 26 से क्या कह रहा है वो? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतानों। अब आगे कह रहा है, तुम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, चाहे स्त्री ने लिया, चाहे पुरुष ने लिया, चाहे यहूदियों ने लिया, चाहे यूनानी ने लिया, चाहे दास ने लिया, चाहे स्वतंत्र ने लिया, जितनों ने, किसी ने भी जितनों ने बपतिस्मा लिया, उन्हें उन्होंने मसीह को पहन लिया, परमेश्वर के संतान हो गए, वो उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब उनमें कोई असमानता नहीं है। तो जो यहां पर ये पद आ रहा है उस बात की को लेकर समझा रहा है कि यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो ना यूनानी है, ना यहूदी है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना ऐसा है, ना वैसा है, लेकिन सब परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर की दृष्टि में अब तुम एक हो गए। यहां उस स्थल को, उस खंड को समझा रहा है। और तब 29 पद कहता है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के संतान और एक प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। अब उसको उत्तराधिकार भी मिला है, पुरुष चाहे स्त्री उत्तराधिकार मिला है। तो ये जो खंड है, ये जो पद है, आप एक पद को लेकर अपनी व्याख्या नहीं कर सकते, वो गलत होगा। आपको उस पद को समझने के लिए 26, 27, 28 के बाद 29 पद को लेकर चलना होगा, तब आप समझेंगे कि पौलुस परमेश्वर का वचन के द्वारा क्या सिखाना चाह रहा है, कि क्यों हम सब एक समान हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसके वारिस हैं, हम उसके अधिकारी हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई हो, चाहे देशी देश हो, क्योंकि अगर हमने विश्वास किया है तो हम उसके सामने सब एक हैं। वो ये कह रहा है। लेकिन जब यहां पर पृथ्वी प्रति कलीसिया की बात आती है, तो कलीसिया में अब यहां पर दूसरे अध्याय में आई है, उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में वो कह रहा है, मैं तुम्हें सहायक बनाऊंगा। और यहोवा परमेश्वर भूमि के प्रत्येक जाति के वन पशु, आकाश और सब प्रकार के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया और देखा कि उसको क्या क्या नाम रखता है। और आदम ने प्रत्येक जीवित प्राणी को जो नाम दिया वो उसका नाम हो गया। तू हाथी हो जा, तू शेर हो जा, तू चूहा हो जा, तू बिल्ली हो जा, सब हो गया, समझ हो गया नाम, ठीक है। और आदम ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षी, सब कुछ के नाम रखे, परंतु आदम के योग्य कोई सहायक ना मिला। उन पक्षियों में, उन जानवरों में, उन चर्चों में, उन सब चीजों में, जिस जिस का वो नाम रखता चला जा रहा है, वो नाम उसने रखा। और इसीलिए आगे चल करके स्त्री का नाम भी आदम ही ने रखा, आगे चल के अभी हम देखते हैं, क्योंकि वही नाम दे रहा है सबको, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया नाम देने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, तब वो कहता था 21 पद में, अतः यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब सो रहा था तो उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान में मांस पर दिया। तब यहोवा परमेश्वर आदम में से निकाली गई पसली से एक स्त्री की रचना करके आदम के पास ले गया। क्या मतलब है? स्त्री पुरुष में से निकाली गई है, पुरुष से स्त्री से पुरुष नहीं निकला। यह जरूर है बाद में परमेश्वर ने संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री को चुना, आगे हम जाके देखते हैं उसको, लेकिन शुरुआत पुरुष से हुई है। प्रथम पुरुष है, परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का यह परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने उसको पहले रखा है। तब लिखा हुआ 22 पद में, तब यहोवा परमेश्वर के पास ले गया और आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, और यह नारी कहलाएगी क्योंकि नर में से निकाली गई है। यहां पर भी आदम नाम दे रहा है, आगे चलकर फिर एक और नाम दे रहा है जिसको आगे चलकर कहते हैं। तो हम पहले इस बात को देख रहे हैं, उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में तीन अध्याय 6 पद में, जब स्त्री ने देखा, अब यहां पर क्या स्थिति हो रही है, अब वो इसी चीज को तिमोथियों में समझा रहा है, तिमोथियों पॉलुस इसी की चीज को चाह रहा, क्यों, रीजन क्या है, कारण क्या है? पहला कारण यह है कि स्त्री के पुरुष में से बनाई गई है, पुरुष पहले है, स्त्री बाद में है, पुरुष को अधिकार में दिया गया है, स्त्री को अधीनता में रहना है, यह परमेश्वर ने कहा है। अब उसके बाद दूसरा रीजन यह है कि स्त्री पुरुष बहका नहीं गया लेकिन स्त्री बहकाई गई। पहले पद से लेकर सारा वर्णन है, 6 पद में, जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए भावना और बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य, तो उसने फल तोड़कर क्या करा, पहले किसने खाया, खुद खाया उसने, फिर उसने पति को। यद्यपि यहां पर पुरुष की गलती है, पुरुष ने अपने जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, कुछ बातों में पुरुष ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर जिस बात की व्याख्या कर रहा है, जिस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है कि स्त्री ने ऐसा किया है, तो स्त्री ने परमेश्वर के नियम को तोड़ा, परमेश्वर के ने अधीनता में रखा था। क्या करना चाहिए था स्त्री को करना चाहिए था, जब शैतान ने उसे बातचीत करी थी तो उसके पास जाना चाहिए था कि आदम देखिए ये शैतान आया था और वो ऐसा ऐसा कह रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या हम करें। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने एकदम से जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया, बिना सोचे बिना समझे, ना सब निर्णय लिया लेकिन उसने अपने आदम को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया। सो ये हम देखते हैं। और तब उसके बाद, लेकिन अब ये कहानी खत्म नहीं, अब तब परमेश्वर एक और बात कह रहा है, तब आ गया ये 3 अध्याय के 16 पद में, स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा के बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति पर रहेगी और वो तुझ पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। कहां पर ठहरा गया था? आदम की वाटिका में परमेश्वर ने यह अधिकार पुरुष को दे दिया था। अगर आदम की वाटिका में यह अधिकार पुरुष को दे दिया गया है तो वो अधिकार छीनेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा, हटेगा नहीं, बदलेगा नहीं। इस बात को समझना है। प्रभु ने संसार में बहुत बहनों को बहुत अच्छी रीति से सेविका बना के रखा है। बहुत सारी बहनें जिन्होंने सेवा की है और आज भी कर रही हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे पदों में आज महिलाएं हैं जो चर्च से बाहर हैं, चर्च के बाहर बाहर हैं। लेकिन जब चर्च की बात आती है, जब कलीसिया की बात आती है, तो कलीसिया के संचालन में, कलीसिया की सेवा में, वह भूमिका प्राथमिकता पुरुष की है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, महिलाओं की सेवा है, बहुत जगह सेवा है। अब आपने जो भी आज इतने साल हम लोग सेवा कर सके प्रभु की दया से, सेवा में हम दोनों जन मिल करके, मेरे अकेला की सेवा नहीं है। अभी पिछले दिनों में मुझे किसी ने कुछ ऑनर किया तो उन्होंने केवल मेरा नाम लिखा, मैंने उनसे कहा धन्यवाद आपने जो किया, लेकिन मैं अकेला ही नहीं था। अगर मेरी पत्नी साथ में ना होती तो मैं सेवा नहीं कर सकता था, उनका पूरा सहयोग है। लेकिन संडे को कभी उन्होंने प्रचार नहीं किया, भैया बीमार है तो चलो मैं प्रचार कर लूंगी, नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, मैं आप तो हूं, मैं कर लूंगी प्रचार, नहीं ऐसा नहीं। ये हम इसको समझना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम अनादर करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम जाते हैं। ये हमें समझना है, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे, परमेश्वर ने जो नियम बनाए। तो पहली बात प्रभुता, लेकिन आगे चल करके इस बात को जब वो ये कह रहा है तीमोथी उसको लिखते हुए कह रहा है क्योंकि पहले आदम पहले और हवा बाद में बनाई गई। 14 पद में आदम बहकावे में ना आया परंतु स्त्री बहकावे में आकर अपराधी हुई, पर परमेश्वर ने स्त्री पर दया करी। लेकिन यहां पर एक और पद है फिर 15 पद, ये पद भी बहुत जटिल कठिन पद है। परंतु स्त्रियां यदि संयम के साथ विश्वास प्रेम पवित्रता में बनी रहें तो संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगी। फिर जैसे मैंने कहा ये उद्धार प्राप्त करना ही नहीं, बाइबल के विद्वानों के अलग अलग विचार इसमें लेकर अलग अलग मत है। परंतु मुख्य जहां तक मैं समझने पाया हूं प्रभु की दया से प्रभु के अनुग्रह से अध्ययन करते हुए लोगों के सेवकों के प्रचार को सुना है, कई सारे प्रचारकों को सुनते हुए जो आज भी भारत के सॉरी विदेशों के अच्छे अच्छे प्रचारक हैं उनके उनको सुनते हुए जब जिस बात को अध्ययन मैंने किया है मैंने इस बात को जाना है कि क्या मुख्य बात वो कह रहा है। फिर से मेरे साथ तीसरा कंते में हम एक मैं कद पर पढ़ूंगा 15 पद, प्रभु ने परमेश्वर ने क्या कहा था 3:15 में, मैं तेरे वंश और स्त्री के बीच में तेरे वंश और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्नूंगा, वो तेरे सिर को कुड़तेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक है, और तब 15 पद में तेरी प्रसव पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा में ही बच्चों को उत्पन्न करेगी, पीड़ा में ही बच्चों को तू उत्पन्न कर। स्त्री के लिए कि तुझे पीड़ा को सहना पड़ेगा, पीड़ा को सहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो पद आ रहा है संतान उत्पन्न करने के द्वारा स्त्री को उद्धार नहीं मिलता कि ठीक है मैंने संतान उत्पन्न कर लिया मुझे उद्धार मिल गया, वो नहीं है। उद्धार केवल एक तरह से है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर का वचन चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री सबके लिए एक है। परमेश्वर की दृष्टि में अदन की वाटिका में पुरुष स्त्री दोनों पापी ठहरे, पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, पाप के कारण मृत्यु आ गई, दंड मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन परमेश्वर का वरदान यह हो गया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो, मारा जाए, और जो उस पर विश्वास करे चाहे पुरुष चाहे स्त्री बिना उस पर विश्वास करे, बिना पापों से पश्चाताप करे, बिना पापों से क्षमा मांगे, बिना उसको अपने जीवन स्वीकार करे, कोई भी पुरुष या स्त्री उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। तो उद्धार प्राप्ति के लिए केवल एक ही साधन है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करना। लेकिन यहां पर जो उद्धार शब्द आ रहा है नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ है 15 पद में, जो फुटनोट है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो सुरक्षित रहेगी, वो सुरक्षित रहेगी, शी विल बी सेव्ड, वो टेम्पटेशन में नहीं पड़ने पाएगी, वो परीक्षा में नहीं पड़ने पाएगी। वो अगर अपने घर की जिम्मेदारी को, अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को जो उसके पास दी गई है, संतानों की देखभाल करने को, उनको शिक्षा देने को, उनको संवारने को, उनको देखने की जगह वो केवल पुलपिट की सेवा करेगी और वो फिर बाद में रहेगी, तो वो अपने विश्वास में सुरक्षित नहीं होती, उसके अंदर घमंड उत्पन्न होगा, उसके अंदर ये उत्पन्न होगा मैं बहुत बड़ी शिक्षिका हूं, मैं यहां प्रचार कर सकती हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं वो कर सकती हूं, तब उसके अंदर मैं उत्पन्न होने लगेगा और वो फिर सुरक्षित रहेगी, जो उसके लिए टेम्पटेशन का कारण बनेगा और बाद में वो गिर सकते हैं। और कितनी कहानी को आज हम संसार में सुनते हैं कि ऐसा ही है, हमारे भारत देश में कितनी कहानी है, मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं। सो परमेश्वर का जन लेकिन क्या कह रहा हो, यहां पर चार चीजें स्त्री के लिए कह रहा हो, पहली बात संयम, दूसरी बात विश्वास, तीसरी बात प्रेम, चौथी बात पवित्रता। ये चार चीजें इनके साथ जब वो अपने परिवार की देखभाल करेगी, अपने जिम्मेदारी को पूरा करेगी, कलीसिया में अपने पति के साथ मिलकर जो पति उसका प्रचारक है, शिक्षक है, सेवक है, अगुआ है, उसके साथ मिलकर के वो अन्य प्रकार की सेवा करेगी, उसका परिवार एक अच्छा परिवार समझा जाएगा, अच्छा परिवार समझाया जाएगा कि वो अपने बाल बच्चों को संभालना जानती हैं, प्रभु के भय में ले जाना चाहती हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं, उसका देखभाल अच्छी करती है, यहां तक कि उसका जीवन सादगी का जीवन है, उसका जीवन बहुत गंभीरता का जीवन है, उसका जीवन एक साक्षी का जीवन है, इसके द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएगी। ये परमेश्वर का वचन समझाना पड़ता इसको हमें देखना है। सो यहां पर जब पौलुस इस बात को सिखा रहा है तो ये इस बात को वो निंदा नहीं कर रहा है, अपमान नहीं कर रहा है, महिलाओं को तिरस्कार नहीं कर रहा है, महिलाओं को नीचा नहीं कर रहा है, लेकिन सही तरीकों को सिखा रहा है, सही तरीकों को समझा रहा है कैसे कलीसिया में एक स्त्री को जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जब हम अगुवे बन की बात करते हैं तो जो कलीसिया में अगुवे हैं या आने वाले दिन में अगुवा बनना चाहते हैं या उनके लिए प्रार्थना की जाती है, तो उनको भी इस बात को ध्यान रखना है कि उनकी पत्नियां कितनी गंभीर हैं, कितनी आत्मिकता में, विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में, संयम में कितना है। हम लोगों मित्र बना सकते हैं लेकिन कितना अधिक हम आत्मिक रीति से दूसरों को, बहनों को शिक्षा दे सकते हैं, कितना अधिक मेरा व्यक्तिगत जीवन स्वयं परमेश्वर के साथ है। अगर मेरा जीवन गंभीर नहीं है, मेरे बच्चे गंभीर नहीं होंगे, मेरी सेवा गंभीर नहीं होगी, मेरा जीवन ऊपर हवा 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 करेगा। और क्या हो रहा है, क्यों ये कह रहा है, अभी एक फाउंडेशन लाए डाली जा रही है धीरे धीरे। पौलुस कलीसिया के बारे में समझा रहा है कि कलीसिया में किस प्रकार सेवा होती है और कलीसिया में सेवकों को किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है। अगर वो सेवक कर रहा है तो उसकी पत्नियां किस प्रकार से होनी है और तब किस प्रकार से वो आगे चल के कलीसिया को संभाल सकता है, जिसमें कलीसिया में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, जवान लड़के भी हैं, विधवा भी हैं, और किस तरह से उनको संचालित करना है, ये वो कहना चाह रहा है। और इसलिए इस स्थल में बहुत ही मुख्य रीति से बहनों के बारे में कि किस प्रकार से बहनों का जीवन एक गंभीरता का जीवन होना चाहिए। जब एक विश्वास में आते हैं, आपको मालूम है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब प्रभु, कई बार आपने वो देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कहानियों को, दयासागर है जिसे, जब एक स्त्री जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जब दुष्ट आत्मा थी तो दुष्ट आत्मा थी उसका जीवन कैसे था, लेकिन जैसे दुष्ट आत्मा निकलती है वो क्या करती है, वो अपने सर को ढककर, कपड़ों को ढककर के प्रभु के चरणों में बैठ जाती है, अधीनता का। मरियम के बारे में क्या लिखा, क्यों लिखा मरियम के बारे में, उससे वो भाग कभी मरियम से छीना नहीं जाएगा, उसने उत्तम भाग को छीन लिया, क्योंकि गंभीरता से, सादगी से, दीनता से वो प्रभु के चरणों में रह करके सीखने वाली थी, ये इसके लिए कहा गया। और बाइबल में परमेश्वर ने महिलाओं को इस्तेमाल किया है। आप जो महिलाएं यहां पर हमारे कलीसिया में, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, जो भी हैं, प्रभु हम सबके लिए प्रभु की स्तुति करते हैं और भी चाहते हैं, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत काम है जो आप कलीसिया में कर सकते हैं, कई तरह की सेवा है। अभी आज भाई देशा ने प्रार्थना करी, बहन महिमा करकटा के प्रार्थना की, वो बीमार है, कितना अच्छा हो कुछ बहनें जाकर के मिलकर, 3-4 बहनें मिलकर के जाकर उनके साथ बात में, ठीक है हम 4-5 बहनें जाएंगे उनके साथ मिलकर जाके बात करें, प्रार्थना करें और उनको उत्साहित करें, बहुत बड़ी सेवा है। आप कलीसिया के ब्याह में जाकर के अपनी एक बहन को निराशा में आशा प्रदान कर रहे हैं, आपके पास सेवा है कि साथ मिलकर के, मैं प्रैक्टिकल बात में आना चाहता हूं, बात मिलकर के समूह बना के, यानी एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तरीके से सिस्टम के साथ मिलकर विचार करके, अच्छा ठीक है इस हफ्ते में हम इस बहन के साथ 10 मिनट के लिए समय व्यतीत करेंगे, 20 मिनट के समय व्यतीत करेंगे, और जाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए बातचीत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं सुन सकते हैं, उनके कुछ कोई गरीब है कोई दया है उसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ये गरीब है इसके पास है, हम 4-5 बहनों को मिलकर कुछ करेंगे और साथ मिलकर के आएंगे, साथ मिलकर के एक समूह के रूप में, बहुत सेवा है कलीसिया के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, हम उनको पढ़ा सकते हैं, हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, बहुत सेवा है आप लोगों के पास, सेवा के केवल संडे को आना काफी नहीं है, आकर के बैठ के इस वचन सुन के चले गए, प्रभु धन्यवाद आप आते हैं अच्छी बात है, लेकिन और भी आपकी ऊपर जिम्मेदारी है, आप और भी अधिक कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं, आप और अधिक कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है हम 5 बने मिलेंगे और मिलकर कलीसिया के परिवारों के लिए 1 घंटा किसी आज इसके घर में या कल उसके घर में मिलकर केवल प्रार्थना करेंगे, गपशप नहीं मानेंगे, एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे, आप बहुत कुछ करते हैं प्रार्थना के द्वारा, सहयोग के द्वारा, सेवा के द्वारा। माफ कीजिएगा हम उदाहरण दे रहे हैं, कली 12 बंकी जब हमने कली से आरंभ करी, अभी तो प्रभु ने हमें लोग दे दिए उस समय, इसके बाद उस समय हमारे पास कोई लोग नहीं थे, कोई नहीं था, और ग्रास रूट से हमने काम शुरू करा था, और जब वहां चर्च बना था वहां पर बहनों ने, आंटी ने कितना उस समय बिनाई का काम करते थे, अचार बनाते थे, अचार बनाकर हम लोगों ने सेल करा और वो पैसे जमा करके बिल्डिंग के लिए पैसा हमने जमा करा, अचार बनाया, सिलाई कराई, क्या क्या कपड़े बनाए, उसको सेल करके, यहाँ बेतल में बुक शॉप था वहां पर सामान रखा, वो सेल होता था, जमा करते थे, वो करते थे। जिस दिन चर्च बन रहा था, छत डली थी, 9 बहने पूरे सुबह से, हमारे पास बिजली नहीं थी, कुछ नहीं थी, सुबह से लेकर हैंडपंप से पानी भरते रही बहने और छत डाली गई थी 9 बहनों ने सुबह से लेकर शाम तक। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, प्रभु धन्यवाद हो, उस तरह से वो 12 की कली से बनी थी, हमने वहाँ पर शाम को जाते थे और जाने के बाद शाम को टोकरी में मट्टी उठा उठा के उसमें भरते थे, गड्ढे में भरते थे, ट्रॉली आगे डाल जाती थी और वे भर के गड्ढे में भरते थे। बहुत प्रैक्टिकल काम करा हमारी बहनों ने, हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत कार्य है, केवल एक प्रचार का काम नहीं है। अगर आप दो बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उनको वचन बांटते हैं, उनको सुख उत्साहित करते हैं, एक बीमार के साथ आप बहुत कर रहे हैं। और ये चीज होनी चाहिए कलीसिया में, ये व्यवहारिक रीति से विचार करना, बहनों को बैठ करके बातचीत करनी, कैसे हम कलीसिया की उन्नति का कारण बनते हैं, कैसे परिवारों को दृढ़ बनाते हैं, कैसे किसी बहन को मजबूत करते हैं, ये हमें सोचना है। आपके पास एक हफ्ते में क्या दो घंटे टाइम नहीं निकल सकता? निकल सकता है, आप निकाल सकते हैं। ये प्रार्थना करनी है बहनों को, इच्छा रखनी है। और इस केवल मैं टीचिंग नहीं देना, लेकिन एक किस प्रकार से बहनों के द्वारा कलीसियाई सेवा उन्नति करती है, बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और वो इस कलीसिया में आना है और तब प्रभु के नाम को मैं यही करा इन कलीसिया बहनों ने। आने वाले दिन में हम देखेंगे किस प्रकार से बहनों ने करा, जब पढ़ते जाएंगे वो सारा वर्णन है। सो प्रैक्टिकली तो केवल प्रचार ही सेवा नहीं है, लेकिन उनका बहुत योगदान है आपके देने के द्वारा। क्या आप नियमित रीति से अपने जो आए हैं उसके हिसाब से कुछ आप परमेश्वर को देते हैं, या आपकी मुट्ठी बंद रहती है? देने के द्वारा, किसी सहायता करने द्वारा। अभी किसी दिन बात कर रहा था, मैं कह रहा था, मैं किसी को समझा रहा था, एक बच्ची हमारे पास है जिसको हमने पिछले दिनों में संभाला, आज वो बढ़ गई, प्रभु का धन्यवाद, अच्छे स्थान पर काम कर रही है। वो आई, कुछ कुछ बात कर लेंगे, अंकल आप क्या पसंद करते? मैं कुछ पसंद नहीं करता अंकल, आप क्या नाम से कौन सा कपड़ा? मैंने मुझे कोई कपड़ा नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े जितने मिलते मैं बांट देता हूँ। मैंने, अगर तुम करना चाहती हो, तुम्हारे जीवन को संभाला है, एक किसी गरीब बच्चे को तुम उसको गोदी ले लो और उसके माँ बाप से कहो कि हम हर महीने में अगर 500-600 रुपये इसकी फीस पड़ती है, मैं इसका खर्चा उठाऊंगी। तुम्हारा जीवन बना है, तुम यहाँ तक बढ़ी हो, आज अच्छा काम कर रही हो, 30-35 हज़ार तुमको मिल रहे हैं, क्या तुम एक बच्चे गरीब बच्चे को नहीं संभाल सकती? कह लें अंकल मुझे बच्चे का नाम दे दीजिए, मैं संभालूंगी। उसने प्रतिज्ञा करी। कितना काम है जो आप कर सकते हैं? कभी हम सोचते इस बात को? हम नहीं सोचते इस बात को, हम विचार नहीं करते। परमेश्वर का वचन हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाना चाहता है, व्यवहारिक लाइफ में ले जाना चाहता है। मसीह जीवन केवल विश्वास करके बैठने का नहीं है, हमें कुछ करने का। कभी कुछ थोड़ा सा कर दिया वो बात नहीं है। अभी क्रिसमस का समय आ रहा, अच्छी बात है, तैयारी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पहले से आप प्रार्थना करके सोचेंगे किसी के लिए कुछ आप करने तैयार होंगे? शायद एक किसी परिवार के लिए कुछ करने तैयार होंगे? प्रभु सहायता करें। सो यहां पर पौलुस क्या कहना चाह रहा है? पौलुस ही कहना चाह रहा है, भले कार्यों के द्वारा, जैसा स्त्रियों को शोभता है, अपने आप को भक्तिन कहते हैं। अगर हम अपने आप को भक्तिन कहते हैं तो हमारे भले काम जो है, उस तरह के व्यवहारिक जीवन, हम परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी का महिमा कारण बनते हैं। बहनों का स्थान कलीसिया में बराबर है, केवल एक बात को छोड़, प्रचार करने की शिक्षा देने का काम प्रभु ने पुरुषों को दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजों में प्रभु सहायता करें ताकि आप बढ़ सके। सो अंत में मेरा एक प्रश्न है, इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्या सच में, क्या हम वो महिलाएं परमेश्वर के दिए हुए वचन के द्वारा उस अधिकार को स्वीकार करने तैयार हैं? या हमारे सामने एक प्रश्न है, या हम आर्गुमेंट करने तैयार हैं, या हम विवादों में पढ़ने तैयार हैं, या परमेश्वर के वचन जो उत्पत्ति से उसने ठहरा दिया है, उत्पत्ति से उसने ठहरा दिया और उत्पत्ति से ठहराते हुए प्रभु लेके गया है, प्रभु का वचन लेके गया। प्रभु सहायता करें सच में कि मैं और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसियाओं के, इन बहनों के लिए, कि प्रभु इन लोगों को और दिख इस प्रकार का जीवन दे दे, संयम का, विश्वास का, प्रेम का, पवित्रता का, और ऐसे भक्ति जीवन हो जिसके द्वारा प्रभु का कार्य कर्ज किया जा सके। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, पीछे मत होइए, ढीले मत पड़िए, लेकिन प्रभु के लिए आगे बढ़िए और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, उसके द्वारा कलीसिया उन्नति करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे।